निरंतर आप आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति श्रवण कर रहे हैं। आज सप्तम अध्याय के 181वें श्लोक में महर्षि मनु आक्रमण के लिए जाना और उसकी व्यूह रचना इत्यादि की व्यवस्था के बारे में कहते हैं। यथा तु यानम तिष्ठेद अरिराष्ट्रम प्रति प्रभु यदानेन विधानेन यायादरिपुरम सनैः। प्रभु अर्थात राजा यदा अरिराष्ट्रम प्रति यानम आतिष्ठेत, जब भी शत्रु के राज्य पर चढ़ाई करे तदा अनेन विधानेन सनैः अरिपुरम यायात, तब इस विधियों के अनुसार सनैः सावधानी पूर्वक अरिपुरम यायात, शत्रु राष्ट्र पर चढ़ाई करे। मार्गशीर्षे शुभे मासे यायाद यात्राम महीपति फाल्गुनम वा तु चैत्रम वा मासो प्रति यथा बलम। महीपति शुभे मार्गशीर्षे मासे, राजा को चाहिए कि शुभ अर्थात चढ़ाई के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने में अथवा फाल्गुनम वा चैत्र मासो, फाल्गुन और चैत्र महीने में यथा बलम अपने शक्ति के अनुसार यात्राम प्रति यायात, शत्रु की ओर विजय यात्रा के लिए चढ़ाई करे। अन्येष्वपि तुकालेषु यथा पश्ये ध्रुवं जयं तदा यायात् विग्रहेषु व्यसने चोत्थिते रिपोः। अन्येषु अपि कालेषु, अन्य कालों में भी यदा जयं ध्रुवं पश्येत, जब अपनी विजय को निश्चित समझे, रिपो व्यसने उत्तिथे और शत्रु को आपत्ति में फंसे होने पर शत्रु राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर तदा उस समय विग्रह एव यायात, अपनी ओर से ही झगड़ा करके उस पर चढ़ाई शुरू कर दे। चूंकि ये श्लोक 182 और 83 प्रक्षिप्त माने जाते हैं और ये मान्यताएं मनु विरुद्ध हैं। 184वें श्लोक में कहते हैं, कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि उपग्रह्यास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च। जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने जावे तब मूले विधानम तो अपने राज्य की रक्षा का संबंध च यात्रिकम यथाविधि कृत्वा और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके आस्पदम एव उपग्रह अपनी सेना यान वाहन शस्त्र अस्त्र आदि पूर्ण लेकर चारान सम्यक विधाय, सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचार देने वालों पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने जावे। अगले श्लोक में अर्थात 185वें श्लोक में कहते हैं, संशोध्य त्रिविधम मार्गम षड्विधम च परम स्वकम साम परायिक कल्पेन यायादरिपुरम शनैः। त्रिविधम मार्गम संशोध्य, तीन प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जलम भूमि में और तीसरा आकाश मार्ग में युद्ध भूमि बनाकर रथ अश्व हाथी जल में नौका में आकाश में विमान इत्यादि यानों से जावे। और षड्विधम पैदल रथ हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ लेकर बलम स्वकम बलपूर्वक पूर्ण सामपारे कल्पेन किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके अरिपुरम सनैः ही आयात, शत्रु के नगर में समीप धीरे धीरे जावे। त्रिविध मार्ग का जो मनुसम्मत अर्थ है तो जंगल अनूप आवटिक किया गया है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का अर्थ केवल भूमि के मार्ग के अंतर्गत आते हैं। भास में अर्थ स्थल युद्ध, जल युद्ध और वायु मार्ग से प्रासंगिक सिद्ध होता है, क्योंकि उस काल में समुद्री यानों की चर्चा भी आती है तथा वायुयान भी थे। आक्रमण के समय शत्रु और शत्रु मित्र पर विशेष दृष्टि रखना चाहिए, ऐसा 186वें श्लोक में विधान किया गया। भवे सेविने शत्रु सेविने मित्रे च गूढ़े युक्ततरो भवे गत प्रत्यागते चैव सही कष्टतरो रिपुहु। शत्रु सेवने गूढ़े मित्रे, जो भीतर से शत्रु से मिला हुआ हो अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखते, गुप्तता से शत्रु के भेद को देवे, गत प्रत्यागते एव उसके आने जाने में उससे बात करने में युक्त तरह भवित अत्यंत सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र को कष्ट तरह रिपु बड़ा शत्रु समझना चाहिए। दंड व्यूह व्यूहेन तन मार्गम याया तुषकटेन वाह वाराह मकराभ्याम वा सूच्या वा गरुड़ेन वा। दंड व्यूहेन दंड के समान सेना को चलावे, सकटेन सकट जैसा गाड़ी के समान, वाराह मकराभ्याम वाराह जैसे सुअर एक दूसरे के प्रति दौड़ते जाते हैं, कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं, वैसे जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे। सूक्ष्म वा गरुणेन वा जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल, उससे शत्रु स्थूल होता है, सूत्र स्थूल होता है, वैसे शिक्षा से सेना को बनावे। नीलकंठ अर्थात गरुण के ऊपर नीचे झपट्टा मारता है, इस प्रकार सेना को यायात लड़ावे। यहां पर हम देखते हैं कि जिनमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा, अंत में सेनापति, उनके अगल बगल एक एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों के साथ एक पंक्ति घुड़सवारों की, फिर इस साथ में पदातियों की संख्या, इस प्रकार दंडे के समान लंबी पंक्ति के आकार में सेना की मोच बिंदी को दंड व्यूह कहते हैं। गाड़ी के समान आगे से पतली और पीछे से अधिक फैलने वाली सेना को शकट व्यूह कहते हैं, और पीछे के भागों से पतली मध्य भाग में अधिक फैलाव वाली रचना को वाराह व्यूह कहते हैं। इसमें सैनिक दल एक दल के पीछे एक दल बढ़ते जाते हैं, जैसे ही शत्रु उन्हें कम समझकर मुकाबला करता है तो पिछली सेना झुंड बनाकर हमला कर देती है, उनके पीछे रक्षा के लिए सावधानी के लिए हल्की सेना पंक्ति रहती है। जिस प्रकार अग्रभाग मोटा मध्य का उससे अधिक लंबाकार हो और विस्तृत हो, पृष्ठभाग पतला हो, उस सेना को मकर व्यूह कहते हैं। और सूची व्यूह में अग्रभाग में नुकीली, पृष्ठभाग में स्थूल आकार वाली सेना रचना सूची व्यूह कहलाती है। आगे से कुछ भाग नुकीला और पीछे दोनों भागों में विस्तृत रूप से फैली हुई सेना संरचना को गरुण व्यूह कहते हैं। इसमें अग्र पंक्ति जब शत्रु सेना से लड़ती है तो शत्रु सेना भी सामने होकर सहर्ष संघर्ष करने लगती है, और अगल बगल फैली हुई सेना शत्रु सेना के अगल बगल से झपट्टा मारकर दाबने की कोशिश करती है। इस प्रकार से ये व्यूह बताए गए हैं। 188वें श्लोक में यतश्च भयमाशंकेत ततो विस्तारयेत बलम पदमेन न चैव व्यूहेन निवशेन सदा स्वयं। यतः भयम आशंकेत, जिधर भय विदित हो ततः उसी ओर बलम विस्तारे, सेना को फैलावे। जिस ओर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे। पदवेन नव्यूहेन, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के पद्म व्यूह अर्थात पद्माकार चारों ओर सेनाओं को रखे, स्वयं निवेशित और मध्य में स्वयं आप रहे, ऐसा पद्म व्यूह होता है। कमल के पुष्प की तरह दल के पीछे दूसरे दल के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप सेना को खड़ा करना, मध्य में राजा का सेनापति होना, राजा या सेनापति का होना, इस मोर्चाबंदी को पद्म व्यूह कहा जाता है। 189वें श्लोक में कहते हैं, सेनापति बलाध्यक्ष सर्वदिक्षो निवेशयेत्, यतश्च भयमाशंकेत प्राचीम च कल्पयेत् दिशम्। सेनापति बलाध्यक्ष, सेनापति और बलाध्यक्ष आज्ञा देने को, बलाध्यक्ष आज्ञा को देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को सर्व दिक्षो निवेश आठों दिशाओं में रखे। यथा भयम आसंकेत, जिस ओर से लड़ाई होती है ताम प्राचीन दिशि कल्पयेत, उसी ओर सब सेना का मुख रखे। परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे, नहीं तो पीछे या पार्श्व से शत्रु की घात का होना संभव होता है। ताम प्राचीन दिशि कल्पयेत, उसे ही पूर्व दिशा मान ले। कहने का मतलब है कि उसी ओर अपना मुख करके शक्ति लगा देना। 190 श्लोक में कहते हैं, गुलमांश स्थापयेत दाप्तान कृत संज्ञान समन्ततः स्थाने युद्धे च कुशलान अभि रून विकारिणः। गुलमान आप्तान स्थाने च युद्धे कुशलान, जो गुल्म अर्थात दृढ़ स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या में सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर, अभिरून अभिरून अर्थात भय रहित, च अविकारिणः जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो, समन्ततः स्थापित सेना के चारों ओर रखे। अर्थात जो योद्धा हो उनको ही चारों तरफ रखे। और 191वें श्लोक में कहते हैं, संहतान्योधये दल्पान कामं विस्तारये बहून सूच्या बद्रेण चैवेतान व्यूहेन व्यूह योधयेत। अल्पान संहतान योधयेत, जो थोड़े पुरुषों से बहुत के साथ युद्ध करता हो तो मिलकर लड़ावे। कामं विस्तारये बहून, और काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे। जो थोड़े पुरुषों से बहुत के साथ युद्ध करता हो तो मिलकर लड़ावे, और काम पड़े तो उन्हीं को तुरंत फैला देवे। जब नगर दुर्ग अथवा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब सूच्या वज्रेण व्यूह, सूची व्यूह अथवा वज्र व्यूह जैसा दुधारा खड़ग दोनों ओर से युद्ध करते जाएं और प्रविष्ट भी होते चलें, वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर योद्धे लड़ावे। एक 192 श्लोक में कहते हैं, शंदनाश्वी समे युद्धे धनरूपे नौद्विपैस्तथा वृक्ष गुल्मा व्रतेचारम रसिचरमा युधै स्थले समे युद्धेत संदन स्वयी। जो सम भूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से अनूपे नौद्विपम, जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, और वृक्ष गुल्म आवृते और वृक्ष झाड़ी में चापई तथा स्थले असिचर्म आयुधई, झाड़ी में बाणों से और स्थल मरुस्थल इत्यादि में तलवार और ढाल से युद्ध करावे। यहां पर हम देखते हैं कि जो युद्ध नीति के अंग बताए गए हैं मनु के द्वारा, उनको अनुशीलन करने में हम पांच अंगों का निर्माण कर सकते हैं। पहला तो युद्ध नीति के आधार, दूसरा युद्धार्थ किला, तीसरा सेना के अधिकारी और चौथे युद्ध में व्यूह रचना और पांचवा शास्त्रार्थ संकेत वर्णन। यहां पर युद्ध नीति के आधार बताए गए हैं, पहला साम, दूसरा दाम, तीसरा दंड, चौथा भेद, पांचवा संधि, छठा विग्रह, सातवां यान, आठवां आसन और नौवां वेधिभाव और दसवां संश्रय। दूसरा हम देखते हैं युद्धार्थ सेना कैसी हो। पहला पैदल सेना, दूसरा रथ सवार सेना, तीसरा घुड़सवार सेना, चौथी हाथी सवार सेना, पांचवी जल सेना और छठी वायु सेना। सेना के अधिकारियों में पहला राजा जो मुख्य नायक होता है, दूसरा सेनापति, तीसरा बलाध्यक्ष और चौथा दूत। और युद्ध में जो व्यूह रचनाओं के बारे में बताया गया है उसमें हम देखते हैं कि पहला दंड व्यूह बताया गया है, दूसरा शकट व्यूह बताया गया है, तीसरा वाराह व्यूह बताया गया है, चौथा मकर व्यूह बताया गया है, पांचवा सूची व्यूह बताया गया है, छठा गरुण व्यूह, सातवां पद्म व्यूह और आठवां वज्र व्यूह। इतने व्यूहों के बारे में मनु ने बताया है। और शस्त्र शास्त्रों के शस्त्र अस्त्रों के बारे में पहला धनुष बाण, दूसरा बाण, तीसरा तलवार, ढाल, कुटायुध, शक्ति, वरुणपाश, लौहदंड, इस प्रकार से आठ शस्त्र अस्त्रों का वर्णन मनु ने किया है। 193वें श्लोक में कुरुक्षेत्रांश मत्स्यांश पंचालांशूरसेन जान दीर्घान लघुंशैव नरान अग्रानी केशु योजयेत। कुरुक्षेत्रान कुरुक्षेत्र निवासी, मत्स्यान विराट नामक प्रदेश निवासी, पंचालान और कान्यकुब्ज और अहिक क्षेत्र के निवासी, सूर सेनजान मथुरा प्रदेश के निवासी, दीर्घान च लघुन च नरान बड़े कद वाले अथवा छोटे कद वाले जो भी हों, उन योद्धा नरों को अग्र अनिकेश योजयेत, सेना में सबसे अग्रभाग में नियुक्त करें। और सेना का उत्साहवर्धन कैसे करे, प्रहर्षयेत् बलम व्यूह यांश सम्यक परीक्षयेत् चेष्टाश्चैव विजानीयान् अरिण्यो योध यतामपि। व्यूह बलम प्रहर्षयेत्, जिस समय युद्ध होता हो तो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, और जब युद्ध बंद हो जाए तब उसके शौर्य को युद्ध में उत्साह वैसे वक्रतों वचनों से सबके चित्त को खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय औषधार्थ से प्रसन्न रखे। व्यूह के बिना लड़ाई न करे न करावे। योधयताम अपि चेष्टा विजानीयात, लड़ती हुई अपनी सेना को चेष्टा को देखा करे। सम्यक परीक्षेत, ठीक ठीक लड़ती है अथवा कपट करती है। शत्रु राजा को पीड़ित करने के उपाय 195 श्लोक से बताए गए हैं। उपरुध्यारिमाशीत राष्ट्रम चास्योपपीड़ेत दूषये चास्य सततम यवसान्नोदके ध्वनम, किसी समय उचित समझे तो अरिम उपरुद्ध आशीत, शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखे और अस्य राष्ट्रम उत्पीड़ित, इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के यवस अन्न उदक ईंधन, चारा अन्न जल ईंधन को सततम दूषित नष्ट दूषित कर दे। भिंद्याक्षैव ताडगामी तड़ागानि प्राकार परिखास्तथा समवयस्कन्दै चैनम रात्रौ विश्रासै तथा, शत्रु के तड़ागानि प्राकार तथा परिखा, तालाब नगर के प्रकोट और खाई को भिंदा तोड़ फोड़ दे। रात्रौ एन विश्रातयेत, रात्र में उसको भय देवी और सम अवस्कंदयेत, जीतने का उपाय करे। शत्रु राजा के अमात्यों में फूट डाले। उपजप्यान जपयेत बुद्धे चैव च तमस तत्कृतम युक्ते च दैवे युद्धेत जय प्रेप सुरपेत भी। उपजप्यान, शत्रु के वर्ग जिन अमात्य सेनापति आदि फूट डाली जा सके उनमें उपजेत, फूट डाले और इस प्रकार तत्कृतम बुद्धेत, राजा शत्रु की योजनाओं की जानकारी ले ले और जय प्रेप्सु, विजय का इच्छुक राजा इस आधार पर अपेत भी, भय छोड़कर युक्ति दैवे उचित अवसर पर युद्धेत, युद्ध आक्रमण शुरू कर दे। सामना दामेन भेदेन समस्तै रथवा पृथक विजेतुम प्रयते तारीन न युद्धन न कदाचन। सामना साम से, दाम से, भेदेन भेद से, समस्त उपायों से एक साथ अथवा अलग अलग, अरीन विजेतुम प्रयतेत, शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करे। कदाचन युद्धेन न, कभी पहले युद्ध जीतने का यत्न न करे। अनित्यो विजयो यस्माद् दृश्यते युद्ध्यमानयो पराजयस्य संग्रामे तस्माद् युद्धं विवर्जयेत्। यस्माद् संग्रामे युद्ध्यमानयो विजयः च पराजयः, क्योंकि संग्राम युद्ध में लड़ते समय विजय या हार अनित्य दृश्यते, अनिश्चित होती। तस्मात् युद्धम विवर्जयेत्, इसलिए युद्ध करना छोड़ देवे। 199 श्लोक ये प्रक्षिप्त माना गया है। 200 श्लोक में कहते हैं, त्रयाणाम अप्युपायानाम पूर्वोक्तानाम संभवे तथा युक्त युवेन संपन्नो विजये त्रिपुण्यथा। पूर्वोक्तानाम त्रयाणाम अपि उपायानाम असंभवे, पूर्वोक्त साम दाम तीनों उपायों में से किसी भी विजय की संभावना न रहने पर संपन्नः तथा युद्धेत, सब प्रकार की तैयारी करके इस प्रकार युद्ध करे यथा, जिससे कि रिपुण विजयेत, शत्रुओं पर विजय कर ले। राजा के विजयोपरांत कर्तव्य क्या हैं? जित्वा संपूजये देवान ब्राह्मणांशैव धार्मिकान प्रदद्यात् परिहारान स्वख्यापयेत् भयानि च। जित्वा, जीतकर विजय प्राप्त करके, धार्मिकान देवान ब्राह्मणानेव, जो धर्माचरण करने वाले विद्वान ब्राह्मण हों उनको ही पूजयेत्, सत्कृत करे, अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ले। च परिहरान प्रदद्यात्, जिन प्रजाजनों की युद्धि में हानि हुई हो उन्हें चितपूर्वक के सहायता दे। अभयानि ख्यापयेत्, सब प्रकार के अभयों की घोषणा करा दे। प्रजाओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा, अतः वे सब प्रकार की भय आशंका से रहित रहें। हारे हुए राजा के प्रति क्या करना चाहिए, सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितं स्थापयेत् पत्रं यद्वंशं कुर्याच्च समयक्रियां। एषां सर्वेषां विजित प्रदेश की इन सब प्रजाओं की चिकीर्षितम इच्छा को समासेन विदित्वा संक्षेप में अर्थात सरसरी तौर पर जानकर कि किसे वे अपना राजा चाहती हैं या कोई विशेष आकांक्षा हो तो उसे भी जानकर उस सिंहासन पर तत्वंशम उस प्रदेश की प्रजाओं में से उन्हीं के वंश में किसी व्यक्ति को स्थापित बिठा दे और समय समय पर समय क्रियाम कुर्यात और उससे शर्तनामा लिखा लेवे कि मैं अपने सारे कार्य आपकी स्वेच्छा के अनुसार करूंगा। 203वें श्लोक में बताया गया है कि प्रमाणीनि प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्मान्यथोदितान् रत्नैश्च पूजयेत् देनं प्रधान पुरुषैः सह। तेषां यथोदितान् धर्मान्, उन विजित प्रदेश की प्रजाओं या नियुक्त राजपुरुषों द्वारा कही हुई उनकी न्यायोचित बातों को प्रमाणानि कुर्वीत, प्रमाणित कर दे, अन्यथा प्रतिज्ञापूर्वक स्वीकार कर ले। अभिप्राय यह है कि न्यायोचित बातों को मान ले और जो अमान्य बातें हैं उनको न माने। और प्रधान पुरुषैः सह एनम, प्रधान राजपुरुषों के साथ बंदी कृत इस राजा का रत्नैः पूजयेत्, उत्तम वस्तुएं प्रदान करते हुए यथा योग्य सत्कार रखे, अर्थात जीत कर उसके साथ प्रमाण अथवा प्रतिज्ञा लिखा ले भी, और जो उचित समय पर समझे उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के प्रजा के पालन का करना होगा, ऐसा उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से, और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो। जो उसको बंदी ग्रह करे तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे। आदानम अप्रियकरम दानम च प्रियकारकम अभीप्सितानाम अर्थानाम काले युक्तम प्रशस्यते। क्योंकि आदानम प्रियकरम, संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना, अप्रीति च दानम प्रियकारकम और देना प्रीति कारण है, काले युक्तम समय उचित क्रिया करना, अभीप्सितानाम अर्थानाम उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना प्रशस्यते बहुत उत्तम है। सर्वकर्मे दमायत्तम विधाने दैव मानुषे तयोर्देवम अचिंत्यम तो मानुषे विधते क्रिया इदम सर्वम कर्म आयात्तम। संसार में सब कर्म दैव मानुषे विधाने, दैव भाग्य और मनुष्य के अधीन है। तयो दैवम तो अचिंत्यम, उन दोनों में से भाग्य तो अचिंत्य अर्थात अज्ञात होता है, मानुषे क्रिया विद्यते, मनुष्य के करने में से कोई काम पूरा किया जा सकता है। 206वें श्लोक में कहते हैं सहवापी ब्रजेद्युक्तः संधिम कृत्वा प्रयत्नतः मित्रम हिरण्यम भूमिम वा संपश्यन् त्रिविधम फलम। यदि पूर्वोक्त कथनानुसार राजा को बंदी न बनाकर उसे उसके स्थान पर दूसरा राजा न बिठाकर उसे ही राजा रखे तो सहयुक्ता उसी राजा के साथ मेल करके प्रयत्नतः संधिम कृत्वा बड़ी सावधानी पूर्वक उससे संधि करके अर्थात संधिपत्र लिखाकर मित्रम हिरण्यम वा भूमिम विविधम फलम संपश्यन्, मित्रता सोना अथवा भूमि की प्राप्ति हो, इन तीन प्रकार के फलों को देखकर अर्थात इसकी उपलब्धि करके ब्रजेत वापस लौट आए। पार्श्वग्राह्यं च संप्रेक्ष्य तथा क्रन्दं च मण्डले मित्राद् अथाप्यमित्राद् वा यात्रा फलमवाप्नुयात्। मण्डले अपने राज्य में पार्श्वग्राह्यं पार्श्वग्राह संज्ञक राजा आक्रन्दं संप्रेक्ष्य आक्रन्द संज्ञक राजा को ध्यान रख के मित्राद् अथापि अमित्राद् मित्र अथवा पराजित शत्रु से यात्रा फलम अवाप्नुयात् युद्ध यात्रा का फल प्राप्त करे। अभिप्राय यह है कि अपने पड़ोसी राजाओं से सुरक्षा के लिए जो या उनको वश में रखने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी यह सोचकर शत्रु या मित्र से वही वही फल मुख्यता से प्राप्त करे। सच्चा मित्र सबसे बड़ी शक्ति होता है ऐसा 208वें श्लोक में बताया गया है। हिरण्य भूमि संप्राप्या पृथ्वी न तथैव तथैदति यथा मित्रं ध्रुवं लब्ध्वा कृशमप्याय तिक्षमं। पार्थिव राजा हिरण्य भूमि संप्राप्या सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से तथा न ऐदते वैसा नहीं बढ़ता जैसा ध्रुवं निश्चल प्रेम युक्त आयतिक्षम भविष्य की बातों को सोचने वाले और कार्य सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अपिकृसम दुर्बल मित्र को भी लब्ध्वा प्राप्त होकर बढ़ता है। प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण बताते हैं। धर्मज्ञम न कृतज्ञम च तुष्टप्तकतिमेव च अनुरक्तम स्थिरारंभम लघुक मित्रम प्रशस्यते। धर्मज्ञम धर्म को जानने और कृतज्ञम कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले तुष्टप प्रकृतम प्रसन्न स्वभाव अनुरुक्तम अनुरागी स्थिरांभसम स्थिरतापूर्वक मित्रता या कार्य करने वाला लघु मित्रम छोटे मित्र प्राप्त होकर प्रशंसते प्रशंसित होता है। कष्टकर शत्रु के लक्षण बताते हैं। प्राज्ञम कुलीन कुलीनम सूरम च दक्षदातारमेव च कृतज्ञम गतिमंतम च कष्टमाहुर अरिम बुधा। सदा इस बात को दृढ़ रखे कि कभी प्रज्ञाम कुलीनम सूरम दक्षम दातारम अर्थात बुद्धिमान कुलीन वीर चतुर दाता कृतज्ञम और किए को जानने वाले और धृति मंत्रम धैर्यवान पुरुष को अरिम कष्टम माहो शत्रु न बनावे क्योंकि ऐसे शत्रु बनावेगा तो वह दुख पावेगा। उदासीन के लक्षण बताते हैं। आरता पुरुष ज्ञानम शौर्यम करुण वेदिता स्थौल लक्ष्यम च सततम उदासीन गुणोदय। उदासीन के लक्षण कहते हैं आर्यता पुरुष ज्ञानम उसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान होता है। शौर्यम शौर्यवीरता होती है। करुण वेदिता करुणा भी होती है। स्थूल लक्ष्यम सततम स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करे उदासीन गुणोदय वह उदासीन कहता है। राजा द्वारा आत्मरक्षा सबसे आवश्यक है ऐसा बताते हुए 112वें श्लोक में कहते हैं। क्षेम्याम सस्य प्रदाम नित्यम पशुवृद्धि करीमपि परित्यज्येन्नपो भूमा भूमिम आमार्थ अविचारयन्। नपः आमार्थम क्षेम्याम राजा अपनी राज्य की रक्षा के लिए आरोग्यता से युक्त सस्य प्रदाम धान्य घास आदि से उपजाऊ रहने वाली नित्यम पशुवृद्धिम करीम सदैव जहाँ पशुओं की वृद्धि होती रहे ऐसी भूमि को भी अविचारयन बिना विचार किए प्रत्येज छोड़ देवे क्योंकि विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे उसमें कष्ट अनुभव न करे। आपदर्थम धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि। कहते आपत्ति पड़ने पर आपत अर्थम आपत्ति की रक्षा के लिए धनम रक्षे धन की रक्षा करे और धनैः अपि धनों की अपेक्षा दारान रक्षेत स्त्रियों अर्थात परिवार की रक्षा करे। दारई ही धनई ही आवे, स्त्रियों और धनों की आत्मरक्षा करना सबसे आवश्यक है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो आत्मरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी रक्षा न हो सकी तो परिवार न रहेगा और न धन ही न राज्य ही। सहसर्वाह समुत्पन्नाह प्रसमी सप्रसमीक्षा पदोभ्रसम संयुक्तांश वियुक्तांश सर्वोपायान स्रजेत बुधः। सर्वाह आपदाह भ्रशम सह समुत्पन्ना प्रसमीक्ष। सब प्रकार की आपत्तियों तीव्र रूप में और एक साथ उपस्थित हुई देखकर बुधा संयुक्तान बुद्धिमान सम्मिलित रूप से, वियुक्तान पृथक पृथक रूप से अर्थात जैसे भी उचित समझे, सर्व उपायान सृजित सब उपायों को उपयोग में लावे। उपेतारम उपेयम च सर्वोपायांश सत्कृणसः एतत्रयम् समाश्रित्य प्रत्येतार्थ सिद्धये। उपेतारम अर्थात प्राप्त करने वाला, उपेक्षम प्राप्त करने योग्य शत्रु, और सर्व उपायानम प्राप्त करने में साम दाम और उपाय एतत्रयम् कृष्णसह समाश्रित्य संपूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात विचार करके अपनी क्षमता देखकर अर्थ सिद्धे प्रयतित राजा अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें विचार बिना विचारे नहीं। अगले श्लोक में अर्थात 216वें श्लोक में कहते हैं, मंत्रणा एवं शास्त्राभ्यास के बाद भोजनार्थ अंतःपुर में जाना चाहिए। एवं सर्वमिदं राजा सहसं मंत्र मंत्रभिः व्याम्य प्याय प्लुयमध्याह्ने भोक्तुं अन्तःपुरं विशेत। एवं इस प्रकार राजा इदं सर्वं, राजा यह सब पूर्वोक्त मंत्रभिः सह सम्मंत्र मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके व्यामस्य व्यायाम आदि शस्त्र शास्त्रों का अभ्यास करके आप्लुत्य स्नान करके मध्याह्ने भोक्तुम दोपहर के समय भोजन के लिए अंतःपुरम विशेत, अंतःपुर अर्थात रानी के निवास स्थान में प्रवेश करे। राजा सुपरीक्षित भोजन करे, इसके बारे में 217वें श्लोक में कहते हैं, तत्रात्मभूतै कालज्ञै आहार्यै सपरिचारिकै सुपरीक्षित मन्नाद्य अद्यान मंत्री विशापहै। तत्र वहां अंतःपुर में जाकर आत्मभूतैः गंभीर प्रेम रखने वाले कालज्ञैः ऋतु स्वास्थ्य अवस्था आदि के अनुसार भोज्य पदार्थों को खाने के समय आहार्यैः शत्रुओं द्वारा फूट में न आने वाले परिचारकैः सेवको पाक अध्यक्षों वैद्यों के द्वारा विशापहै मंत्री विषनाशक युक्तों तथा उपायों से सुपरीक्षितम अच्छी प्रकार परीक्षा किए हुए अन्नाद्यम भोजन को अद्यात खाए। विषय घ्नैरगदेशाश्च सर्वद्रव्याणि योजयेत् विशद्धानि च रत्नानि नियतो धारये सदा। अस्य इस राजा के सर्व द्रव्याणि उपयोग में लाए जाने वाले सब पदार्थों में विषग्नैः अगदैः विषनाशक औषधियां योजयेत् डाले, और राजा नियता विषग्नानि आवश्यक रूप से विषों को नष्ट करने वाले रत्नानि मणियां अथवा औषधियां सदा धारण करे, सदा धारयेत्। परीक्षिता स्त्रियैः शयनम् व्यजनोदकपूष धूपनैः वेशाभरण संशुद्धा स्प्रसेयुः सुसमाहितः। वेश आभरण संशुद्धाः वेशभूषा और आभूषणों से स्वच्छ सुसमाहिताः सावधानी रखने वाली परीक्षिताः परीक्षा ली गई हुई स्त्रियः स्त्रियां एनम व्यजनोदक धूपनैः इस राजा की चमर जल धूप आदि से इस प्रसिद्ध सेवा करें। खाद्य पदार्थों में सामान अन्य प्रयोज्य साधनों में सावधानी रखनी चाहिए। एवं प्रयत्नम कुरवीत यानशय्या शपानासने स्नाने प्रसादने चैव सर्वालंकारे केशुच यानशय्या आसन आसनीय सवारी सोने के साधन पलंग आदि आसन भोजन स्नाने च प्रसादने स्नान और प्रसादन में श्रृंगार आदि प्रसादन में सर्व अलंकारेषु सब राज चिन्ह को जैसे अलंकार आदि साधनों में भी एवं प्रयत्नम कुर्वीत इस प्रकार योग्य सेवकों द्वारा परीक्षा कराने की सावधानी बरते। भोजन के बाद विश्राम और राज कार्यों का चिंतन करना चाहिए। भुक्तवा रेचैव स्त्रीभिरनन्तः पुरेशः विहत्य तु यथा कालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्। भुक्तवान भोजन करके अंतःपुर रनिवास से स्त्रीभिः सह पत्नी आदि पारिवारिक जन के साथ विहरेत आमोद प्रमोद या विश्राम करे और विहत्य विश्राम करके यथा कालं कार्याणि चिन्तयेत् तदनंतर यथा समय कार्यों का चिंतन करे। 222वें श्लोक में कहते हैं कि सैनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण राजा स्वयं करे। अलंकृतस्य सम्पश्येत् आयुधीयं पुनर्जनम वाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च और पुनः अलंकृतः कवच शस्त्रास्त्राणां कवच आदि से राज चिन्हों से सुसज्जित होकर आयुधीयम जनम शस्त्रधारी सैनिकों च वाहनानि हाथी घोड़े रथ आदि वाहनों सर्वाणि शस्त्राणि सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों शस्त्र भंडारों और आभरणानि उसकी सुरक्षा संभाल आदि निरीक्षण करे। 223वें श्लोक में कहते हैं संध्या चोपास्य श्रुड़ियादन अंतर्वेश्मनि च सरभ्रतः रहस्याख्यानां चैव प्रणिधीनां च चेष्टितम् और संध्यामुपास्य सायंकालीन संध्योपासना करके शस्त्रभ्रत शस्त्रास्त्र धारण किया हुआ राजा अंतर्वेश्मनि महल के भीतर गुप्तचर ग्रह में रहस्य आख्यायनानाम राज्य के रहस्य समाचारों को लाने में नियुक्त गुप्तचरों और प्रणधीनाम दूतों और गुप्ताधिकारियों को चेष्टितम कार्यों समाचारों को सुने। गुप्तचरों को समझाकर सायंकालीन भोजन के लिए अंतापुर में जाना चाहिए। गत्वा कंक्षांतनम त्वन्यत् समनुज्ञाप्यतम जनम प्रविशेद्वो भोजनार्थम च स्त्री व्रतोऽन्तः पुरः मनम पुनः तू तंजतम और उन लोगों को अन्यत सम अनुज्ञाप्य आगे के लिए जो समझाना कहना है सब आदेश करके पुनः अंतः परम गत्वा पुनः अंतापुर जाकर स्त्री व्रतः कक्षांतरम भोजनार्थम प्राविशेत स्त्री के साथ द्वितीय अर्थ अंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित भोजनशाला के कमरों में भोजन के लिए प्रवेश करे। रात्रि सायंकाल कहते हैं तत्र भुक्ता पुनः किंचित तूर्यघोषं प्रहर्षितः संविशेत यथा कालं उत्तिष्ठेश्च गतक्लमः भुक्ता भोजन करके पुनः उसके पश्चात तूर घोषा प्रहर्षिता सनाई तुरही आदि बाजों के संगीत से मन को प्रसन्न करके समविशेष सो जाए और गतक्लमः विश्राम करके शांत रहित होकर यथाकालम उत्तिष्ठेत निश्चित समय अर्थात रात के पिछले समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे। एतद्विधानमातिष्ठेत अरोगः पृथ्वीपतः अस्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत। अरोगः स्वस्थ अवस्था में पृथ्वीपति अर्थात राजा एतत् विधानम आतिष्ठेत इस पूर्वोक्त विधि को कार्यों को करे। अस्वस्था अस्वस्थ हो जाने पर एतत् सर्वम तो यह सब कार्यभार भृत्येषु पृथक पृथक विभागों में नियुक्त प्रमुख मंत्री आदि को विनियोजयेत सौंप दे। इस प्रकार से सप्तम अध्याय का उपसंहार कर देते हैं और यहाँ पर श्लोक के वर्णन पर थोड़ा विचार करते हुए देखते हैं कि श्लोक का अभिप्राय यह नहीं है कि रुग्णावस्था आदि की स्थिति में अपने अपने विभाग वाले अमात्यों या सभाओं को अधिकृत प्रमुखों अथवा कार्य निरीक्षण करके सौंप देवे। केवल एक को ही नहीं, यह राजा संक्षेप में दिनचर्या कार्य पद्धति है। पृथक पृथक विभागों के प्रसंगानुसार यही पद्धति उसका इस श्लोक में उपसंहार है। भ्रत के शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए भ्रत शब्द का आजकल अधिक प्रचलित अर्थ नौकर है। यह एक पक्ष रूढ़ हो गया। श्लोक में भ्रत नौकर से नहीं, यहां पर मंत्रीगणों से भ्रत का अभिप्राय है। इस प्रकार से सप्तम अध्याय का 226वें श्लोक में उपसंहार करते हुए अध्याय समाप्ति करते हैं। इति महर्षि मनुप्रोक्तायाम मनुस्मृतौ राजधर्मात्मकः सप्तमो अध्यायः।